तारीख 3 अक्टूबर दिन शनिवार, बीबीसी इंडिया बोल, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। दिल्ली से लगे उत्तर प्रदेश के दादरी इलाके में बीफ खाने के संदेह में हाल ही में एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। कुछ दिन पहले भी कई राज्यों में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध को लेकर काफी हंगामा हुआ था। घटनाओं को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है और इस पर राजनीति भी हो रही है। सवाल है कि क्या खाया जाए और क्या न खाया जाए, ये कौन तय करेगा? बीबीसी इंडिया बोल में आज यही है चर्चा का विषय। अपनी राय रखने के लिए मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर। लेकिन पहले थोड़ा ठहरेंगे और सुनेंगे बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। दादरी में अखलाक अहमद की हत्या के मामले में शनिवार को पुलिस ने दो मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। शिवम और विशाल नाम के दो लोगों की गिरफ्तारी के साथ इस मामले में अब तक कुल 8 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। नोएडा के पास दादरी में गोहत्या और गौमांस खाने की अफवाह के बाद अखलाक को पिछले हफ्ते भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दादरी के बिसराड़ा गांव पहुंचकर ग्रामीणों से मुलाकात की है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज बिसराड़ा गए थे। अंतर्राष्ट्रीय सहायता संस्था मेडिसिन सेंस फ्रंटियर्स MSF ने कुंदूज में अस्पताल पर हुए हमले की कड़ी आलोचना की है। वहीं अमरीका की सेना ने माना है कि कुंदूज के अस्पताल पर हुए हवाई हमले के लिए उसके विमान जिम्मेदार हो सकते हैं। MSF ने इस हमले में अस्पताल के 9 कर्मचारियों की हत्या की मौत की पुष्टि कर दी है और बताया है कि उसके 19 कर्मचारियों समेत 37 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। MSF के निर्देशक बार्ट जेंसेंस ने BBC को बताया कि अमरीका और अफगानिस्तान की सेना को अस्पताल पर हमले की जानकारी दिए जाने के बाद भी बमबारी जारी रही।
So at 2 o'clock, a first impact has arrived and
2 बजे पहला हमला हुआ था और 15 मिनट के अंदर हमने अमरीकी सेना के अधिकारियों को स्थिति की गंभीरता के बारे में सूचित किया था, लेकिन पहले हमले के बाद 1 घंटे बाद तक बमबारी जारी रही और मुझे जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बाद के हमले ज्यादा तेज थे। ये थे MSF के निर्देशक बार्ट जेंसेंस के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। वेटिकन में कैथोलिक चर्च के पादरियों की एक बड़ी सभा से पहले वरिष्ठ कैथोलिक पादरी ने समलैंगिक होने की बात कबूल की है। पोलैंड के क्रिस्टोफ चारस्मा ने कहा है कि समलैंगिकता पर चर्च का रवैया पिछड़ा हुआ है और वो उसे चुनौती देना चाहते हैं। फादर चारस्मा ने कबूल किया है कि वो एक समलैंगिक रिश्ते में हैं और अपनी समलैंगिक पहचान से वो खुश हैं। वेटिकन ने फादर चारस्मा की घोषणा को गंभीर और गैर जिम्मेदार बताते हुए उन्हें उनकी सैद्धांतिक जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया है। सऊदी अरब में हज के दौरान भगदड़ में मारे गए ईरान के 400 से ज्यादा हज यात्रियों के शवों को ईरान पहुंचा दिया गया है। इस मौके पर राष्ट्रपति हसन रूहानी और ईरान के वरिष्ठ सरकारी अधिकारी हवाई अड्डे पर पहुंचे और हज में मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। हसन रूहानी ने एक बार फिर सऊदी अरब की आलोचना करते हुए कहा कि अगर भगदड़ के लिए सऊदी अरब के अधिकारियों के जिम्मेदार होने के सबूत सामने आए तो ईरान सऊदी अरब को कभी माफ नहीं करेगा। नाइजीरिया में सुरक्षा अधिकारियों ने कहा है कि अबूजा के बाहरी इलाकों में 3 आत्मघाती हमलों में 18 लोगों की मौत हो गई है। बीबीसी समाचार।
नेता बोले, अफसर बोले, पैसा बोला, बंदूक बोली, अभिनेता विलेन बोले, नहीं बोल सके तो बस आप। अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा और विषय आप अब तक जान चुके हैं। हमारी टेलीफोन लाइनें खुल चुकी हैं। नंबर एक बार फिर से दोहरा देता हूं, 1811-7000 और 1811-7001। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्लेषक प्रोफेसर पुष्पेश पंत जी। पुष्पेश जी, ये जो गौ हत्या वाला मामला आया, आज 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, कुल मिलाकर ये मामला बहुत गर्म हो गया। अगर इसकी हम टाइमिंग देखें तो राजनीति क्या कहेंगे आप?
नहीं, मुझे लगता है ये बहुत ही विकृत और विचित्र प्रकार की विभत्स राजनीति है कि जब चुनाव आसन्न होते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी घटना घटती है, कभी वो गोहत्या की होती है, गोमांस भक्षण की होती है, कहीं वो सुअर किसी मस्जिद में फेंकने वाली होती है, और जानबूझकर सांप्रदायिक उन्माद भड़काया जाता है और एक मौका मिलता है विपक्षी दलों को या सत्तारूढ़ दल को आप कह सकते हैं कि अपने पक्ष में उन्माद पैदा करने का। मुझे लगता है बिल्कुल भर्त्सना के योग्य है और किसी भी सभ्य समाज में इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
हम जिस बारे में बात कर रहे हैं कि क्या खाया जाए और क्या ना खाया जाए, ये तय कौन करेगा?
मुझे लगता है ये तो खाने वाला तय करेगा कि वो क्या खाना चाहता है, क्या खाने की उसकी औकात है, क्या वो पारंपरिक रूप से खाता आया है। वो अपने धर्म के प्रतिबंध निषेधों के अनुसार कुछ चीज़ें नहीं खाएगा, कुछ हराम होगी, कुछ हलाल होगी, और कुछ पवित्र होगी और कुछ पाप होगा। तो मुझे लगता है कि ये सरकार तय करे या कोई राजनीतिक दल तय करे या कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए तय करे, ये 21वीं सदी में जनतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष समाज में इसे भी बर्दाश्त नहीं किया।
लेकिन सुन के कैसा लगता है कि भाई एक घोषणा होती है कि कहाँ पर कहीं एक व्यक्ति कुछ खा रहा है और एक मॉब आती है और उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है।
मुझे लगता है ये खाने न खाने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न कानून के राज का और राज्य की जिम्मेदारी का है। यदि आप देखें तो शांति और सुव्यवस्था बनाए रखना, कानून को अपना काम करने देना राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। तो यदि ये घटना उत्तर प्रदेश में होती है तो मुझे लगता है प्राथमिक जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है कि कैसे हुआ कि कानून को भीड़ ने अपने हाथ में ले लिया। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकती कि जब केंद्रीय मंत्री ये घोषणा करते हैं कि एक दुखद दुर्घटना थी, ये अकस्मात हुई दुर्घटना थी, इसके लिए कोई पूर्व नियोजित षड्यंत्र नहीं था, तो मुझे लगता है कि पुलिस की जाँच को प्रभावित करने वाले ऐसे बयानों से भी मंत्रियों को, केंद्रीय मंत्रियों को बचना चाहिए और मुख्यमंत्री को शायद अंकुश लगाना चाहिए अपने ऐसे सहयोगियों पर।
एक श्रोता को टेलीफोन लाइन पर है, उनको कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। जी नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं।
मैं यूपी के सोनभद्र से धर्मजीत कुमार बोल रहा हूं।
धर्मजीत जी, जी कार्यक्रम में स्वागत है, अपनी बात रखिए।
मेरा जहां तक मानना है कि जहां तक बीफ खाने का सवाल है, ये तो जो खाने वाला है वही तय करेगा, पर कुछ सामाजिक मान्यताओं के आधार पर, जैसे कि मान लीजिए कोई हिंदू है, अगर वो मुसलमानों के पवित्र जीव जैसे कुछ बोलते हैं सुअर हुआ टाइप का, अगर वो खाएगा कि मुसलमान भड़केंगे, अगर मुसलमान वही गाय खाएगा तो हिंदू भड़केंगे। पर जहां तक सरकार की बात है, अगर सरकार बीप पे वास्तव में प्रतिबंध चाहती है तो सभी प्रकार के मांसों या बीप पे प्रतिबंध लगा देना चाहिए मेरे हिसाब से। और दूसरी बात, जहां तक कानून के रक्षा की बात है, उसकी उस स्तर पर अगर वो भीड़, अगर उस बेचारे एक जो दिल्ली में अभी अभी मारा गया एक हफ्ते पहले तक, अगर वो भीड़ अपने हाथ कानून में लेती है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कानून व्यवस्था कैसे रखी जाए।
धर्मपाल जी थोड़ा सा एक संशोधन कर दें कि जो मुस्लिम हैं या मुसलमान हैं उनमें ये जो सुअर है इसको अपवित्र जीव माना गया है, ठीक है, यानी कि ये निषिद्ध जीव है।
हाँ हाँ, उन लोगों के हिसाब से
जी जी
जी। तो जहाँ तक मेरे हिसाब से कानून की व्यवस्था की बात है तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी बनती है।
सवाल ये है कि खाना, आपका खाना क्या हो, ये कौन तय करेगा? आप तय करेंगे या सरकार तय करेगी या दूसरे लोग तय करेंगे कि आप ये खाएं या ना खाएं?
मुख्य रूप से तो जो खाना चाहता है वही तय करेगा, पर कुछ सामाजिक मान्यताओं के आधार पर, जैसे कि आप हिंदू, जैसे मैंने अभी बताया कुछ देर पहले, अगर खाएंगे तो समाज में आपकी दिक्कत बढ़ेगी, असंतोष फैलेगा और आंदोलन भी होंगे, कुछ झगड़े फसाद भी हो सकते हैं, इसलिए मेन रूप से तो खाने वाला ही तय करेगा,
खाने वाला तय करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मपाल जी। ये जो हमारे धर्मपाल जी श्रोता हैं ये कह रहे हैं कि खाने वाला ही तय करेगा। एक मेरे पास टिप्पणी है फेसबुक पर, जयसिंह साहब हैं, ये लिखते हैं कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है ये तो आप अपने घर में खुद को ही तय करना होगा, दूसरों को खाने वाली चीज़ों में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। क्या हमारे संविधान में ये जो जीने का अधिकार है, क्या मूलभूत अधिकारों में हम इसको रख सकते हैं?
नहीं, मेरे ख्याल में मौलिक अधिकार तो है कि जीने का अधिकार जो है वो एक मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार है।
और इसमें खाने का अधिकार शामिल है?
नहीं, खाने का अधिकार शामिल और निजता का अधिकार शामिल है, जो सर्वोच्च न्यायालय ने कंस्ट्रक्टिव रीडिंग से इस धारा में पढ़ा है। तो मेरी निजता यदि घर के भीतर में, घर के एकांत में अपनी इच्छानुसार नहीं खा सकता हूँ तो आप तो मेरे मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। मगर जो बात भाई धर्मजीत कर रहे थे उसका दूसरा पक्ष भी बहस के लायक है कि जो कुछ सामाजिक मान्यताएं हैं तो क्या हम उनका उल्लंघन कर सकते हैं? अब एक बड़ी विडंबना यह है कि हमारे संविधान में राष्ट्रपिता बापू की प्रेरणा और प्रभाव से गो संवर्धन और गो रक्षण की बात कही गई है, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। इस देश के कानून में कई जगह अनेक राज्यों में गोमांस वर्जित है, तो यदि उन राज्यों में कोई गोमांस का भक्षण करता है तो वो कानून तोड़ता है, मगर उस कानून को तोड़ने की सज़ा सरकार देगी या उस कानून को तोड़ने की सज़ा भीड़ अपने हाथ में लेकर बिल्कुल ही उस आदमी का कचूमर निकाल देगी, ये मेरे ख्याल में अधिक गंभीर चिंता का विषय है, जो कानून के राज की चुनौती है, मानवाधिकारों के उल्लंघन की चुनौती है और संविधान के प्रावधानों की धज्जियां उड़ाने वाली बात।
एक कार्यक्रम में एक श्रोता को और शामिल कर रहे हैं जी, नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं, अपनी बात रखें आप।
जी नमस्कार सर।
नमस्कार
जी, मैं सूरज मिश्रा बोल रहा हूँ, भटरा घाट बिस्पी मधुबनी बिहार से।
सूरज मिश्रा जी, जी बताएं।
जय हिंद सर।
जय हिंद। जय हिंद
जी। मैं कहना चाहता हूँ, हमें इस बात की सबसे पहले मैं अपना खेद जताना चाहता हूँ, हमें इस बात की खेद है कि इस तरह की घटना अभी तक रुके नहीं है, ठीक। और जिसका सबसे बड़ा कारण, इस प्रकार की घटना का सबसे बड़ा कारण है कि हमारी सोच में भिन्नता के साथ साथ धार्मिक भिन्नता का होना है, ठीक है। और धर्म तो मात्र एक
जी, फोन लाइन इनकी कट गई, लेकिन ये जो बात थी ये बड़े पते की बात कह रहे थे।
ये बात बहुत पते की कर रहे हैं, मगर इनका जो तर्क है वो मुझे लगता है बहुत गंभीरता से उस पर विचार किया जाना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत बहुलता है, धार्मिक विविधता है, जनता जनजाति विविधता है, और हर व्यक्ति अपनी धर्म अपने संप्रदाय अपनी जनजाति अपनी क्षेत्रीय विशेषता के अनुसार खान पान तय करता है, तो उसमें एक सहिष्णुता का माहौल बेहद ज़रूरी है। हम जो भी कानून बनाएं वो ये ध्यान में रखकर बनाएं कि वो किसी एक संप्रदाय विशेष की संवेदनशीलता को लेकर ही न बनाए गए हों। यदि वो बहुसंख्यक ही हो सकते हैं, यदि हिंदुओं के लिए गाय पवित्र है और गोमांस वर्जित है, तो इस देश में पूर्वोत्तरी राज्य हैं जिनके लिए भक्षण में बीफ प्रमुख स्थान रखता है।
एक श्रोता की टिप्पणी है, अमित कुमार, इन्होंने फेसबुक पर लिखा है कि अगर 80% आबादी गाय की पूजा करती है तो उसकी हत्या करना, उसका मांस खाना बिल्कुल गलत है, और खाने की आज़ादी का मतलब ये कतई नहीं है कि आप किसी और धर्म के साथ खिलवाड़ करें।
ये अमित कुमार जी बहुत रोचक बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं 80% जनता गाय की पूजा करती है, वो ये मान कर चल रहे हैं कि हिंदू जितनी आबादी है, पहले तो इन्होंने उसका प्रतिशत 80 खुद तय कर लिया, उसमें दलित कहाँ गए जो जिनके लिए ये उस तरह वर्जित नहीं है। अनेक दलित अपनी अस्मिता के प्रश्न के साथ से जोड़ेंगे, जो अनुसूचित जातियां जनजातियां हैं वो कहां चली गई, कि भारत की आबादी में जो अल्पसंख्यकों की मान्यताओं की रक्षा की बात है। अब पूर्वोत्तरी राज्यों में यदि गोमांस खाया जा रहा है और गोमांस खाया जा रहा है या वो भैंस का मांस खाया जा रहा है, वो एक दिगर भैंस का विषय है, मगर क्या वो बहुसंख्यक जनता के धार्मिक मान्यता का माहौल उड़ा रहे हैं या अपनी पारंपरिक परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं?
इसकी जो रेखा है ये बहुत महीन रेखा है,
महीन रेखा है, मगर रेखा स्पष्ट है। धर्म निरपेक्ष राज्य में सार्वजनिक जीवन में किसी भी धर्म की कोई मान्यता हस्तक्षेप नहीं हो सकता, और अब तक भारत धर्म निरपेक्ष जनतांत्रिक राज्य है। तो समाजवाद भले आमुख में जो था वो अब नहीं बचा है, मगर धर्म
लेकिन मूल में धर्म निरपेक्ष तो अभी भी है।
संविधान में कम से कम धर्म निरपेक्ष है, कानून का राज है और जनतांत्रिक है।
बिल्कुल।
तो जनतंत्र का अर्थ सिर्फ बहुमत का आदेश नहीं है, वो अल्पसंख्यक के लिए भी स्थान अवकाश है।
एक कार्यक्रम में एक श्रोता को शामिल कर रहे हैं जी, नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं, अपनी राय रखें। हेलो।
हेलो
जी, नाम बताएं।
हाँ जी नमस्कार, मैं एमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मोहम्मद नासिर बात कर रहा
हूं। मोहम्मद नासिर साहब जी, अपनी बात रखें।
जी मैं अभी पुष्पेंद्र सर की बात भी सुन रहा था, जो जेएनयू से हैं, और मोहनलाल जी आपको बहुत पहले से जानता
हूं जी,
बीबीसी के माध्यम से।
जी
मेरे दो प्रश्न हैं, जब आप सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं तो हमारी आज़ादी कहाँ गई? अगर ये बात है तो हम अपने घर के अंदर जब किसी को कोई आपत्ति नहीं, छिपके कोई काम कर रहे हैं, धर्म हमारा अनुमति दे रहा है, तो फिर दूसरे लोग उसमें आपत्ति क्यों है? दूसरी बात यह है कि अभी एक श्रोता ने एक प्रश्न उठाया कि 80% जनता जो है गौ माता की पूजा करती है, ऐसा तो पुष्पंत जी ने भी खंडन इस बात का कहीं
नहीं, क्योंकि आंकड़े पर दिक्कत है।
हाँ आंकड़े पर दिक्कत है ना, लेकिन अभी सिर्फ गौ माता का ही मामला नहीं है, अगर आप अहिंसा की बात करते हैं तो हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग बहुत तरह के मांस खाते हैं, साउथ इंडिया में बहुत से लोग बहुत तरह की चीजें खाते हैं, इवन कि स्नैक भी लोग खाते हैं, जबकि स्नैक जो है हमारे यहाँ भोलेनाथ की उस पर्व को पूजनीय माना जाता है
जी।
तो इन दो बातों पर आप क्या कहना चाहेंगे? और फिर अगर आप सामाजिक धारणा की बात करते हैं कि समाज का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, तो फिर यहाँ हमारी आज़ादी और हमारी धर्मनिरपेक्षता कहीं ना कहीं बाधित होती है और हमारे जीने का जो अधिकार है उसका भी हनन हो रहा है।
पुष्पा जी, यही बात
पर भी जी,
मुझे कोई मतभेद मोहम्मद नासिर साहब की बात से नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इनकी बात से एक और बात याद आ रही है कि अभी मुसलमानों से भी छोटा अल्पसंख्यक वर्ग जो जैनों का है, उनके एक पर्व पर मांस की बिक्री पर, गोमांस नहीं किसी भी प्रकार किसी के मांस की बिक्री पर पहली बार प्रतिबंध लगाया गया और स्वयं शिवसेना ने इसके प्रति आपत्ति दर्ज कराई
जो कि कट्टरपंथी हिंदूवादी संगठन।
मुझे लगता है कि बिल्कुल मोहम्मद नासिर भाई बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि किसी भी जनतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष समाज में किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग या बहुसंख्यक वर्ग की धार्मिक मान्यता के आधार पर कानून नहीं बनाए जा सकते और प्रतिबंध निषेध नहीं लगाए जा सकते।
एक कार्यक्रम में एक श्रोता को और शामिल कर रहे हैं। जी नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं।
जी मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इमरान है, जयपुर से बोल रहा हूं।
जी मोहम्मद इमरान साहब, आप जयपुर से कार्यक्रम में शामिल हैं, अपनी बात रखें।
जी सर, मैं बड़ी माफी के साथ अर्ज करना चाहूंगा कि हमारे जो गोमांस, मेरा ऐसा मानना है कि गोमांस का सेवन नहीं करना चाहिए, क्यों? क्योंकि इससे हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक भावनाएं आहत होती है। लेकिन सर मेरी जिज्ञासा ये है कि मुझे मेरे मित्र ने एक मैसेज किया जो कि धर्मनिरपेक्ष विचारों का है, उसने मुझे बताया कि मनुस्मृति में चैप्टर 5 में वर्स 30 में ये लिखा हुआ है कि इट इज नॉट सिंफुल टू ईट मीट और ईट इटेबल एनिमल। वो ब्रह्मा हैज क्रिएटेड बोथ द ईटर्स एंड द ईटेबल। महर्षि याज्ञवल्क्य सेज इन शपथ ब्राह्मण दैट आई ईट दिस बिकॉज इट इज वेरी सॉफ्ट एंड डिलीशियस। और ऋग्वेद में भी सर चैप्टर 10:85 पेज नंबर 13 पे है, डिक्लेयर्स ऑन द ओकेजन ऑफ अ गर्ल्स मैरिज ऑक्सन एंड काउज आर स्लॉटर्ड।
मोहम्मद इमरान साहब, आपने काफी अध्ययन कर रखा है और बहुत सारे कोट आप कर रहे हैं।
यह है सर कि अगर जब हिंदू धर्म ग्रंथों में, सबसे पहली बात तो यह सर कि हमारे हिंदू भाइयों की भावनाएं आहत होती हैं तो गोमांस नहीं खाया जाना चाहिए, सबसे पहली बात तो यह सर, क्योंकि इसके अलावा भी खाने के लिए वो सारी चीजें हैं।
बिल्कुल बिल्कुल।
नहीं, मुझे लगता है कि इमरान भाई ने बहुत अध्ययन किया है और ये तो डीसी झा साहब ने अपनी किताब में प्रमाणित कर ही दिया था कि वेदों में गोमांस भक्षण का उल्लेख है। मगर मेरा कहना यह है कि आज हम वैदिक युग में नहीं जी रहे,
नहीं जी रहे।
आज हम जिस युग में जी रहे हैं वहाँ वो सद्भाव नहीं है, वो समरसता समाज में नहीं है, और हमको ये आज तर्क स्वीकार करना पड़ेगा कि कुछ लोग बहुत संवेदनशील हैं और भड़क जाते हैं। मगर मैं फिर घुमा फिरा कर उसी बात पर लौटूंगा कि किसी व्यक्ति या किसी बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक वर्ग की संवेदनशीलता के आधार पर खाने पाने और पहनावे के कानून जनतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष देश में नहीं बन सकते।
एक राम गुप्ता जी हैं, ये फेसबुक पर लिख रहे हैं, मैं हिंदू हूं लेकिन इस देश में सभी धर्म जाति संप्रदाय का मान सम्मान होना चाहिए, किसको क्या खाना है ये तय करना हमारा खुद का अधिकार है। और सबसे बड़ी बात ये कि बार बार हम गोमांस की चर्चा कर रहे हैं, गोमांस के बारे में बहुत मिथक हैं। तमाम लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में क्या है और क्या नहीं है, जैसे कि अभी हमारे इमरान साहब बता रहे थे कि कहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, उसका उद्धरण दे रहे थे।
इमरान भाई एक बड़ी रोचक बात कह रहे थे, उन्होंने हिंदुओं के धर्मशास्त्रों की बात की है, मगर हिंदुओं की कोई ऐसी पवित्र किताब बाइबल या कुरान शरीफ की तरह की नहीं है जिसमें हलाल हराम वर्जित निर्देश साफ साफ रखा गया हो। तो मुझे लगता है कि हिंदुओं के लिए कहना बड़ा कठिन है कि उनके धर्म में ही निषिद्ध है।
क्योंकि अलग अलग सेक्ट हैं जो कि अलग अलग तरीके से अपने जीवन जीते हैं। एक श्रोता को शामिल कर रहे हैं। जी नाम बताएं।
जी भाई, मेरा नाम संजय कुमार है।
संजय कुमार जी कहाँ से बोल रहे हैं?
बिहार के सुपौल डिस्ट्रिक्ट से, बलभद्रपुर गांव से बोल रहा हूँ।
जी सुपौल डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं संजय जी, हाँ अपनी बात रखें आप।
जी भाई जी, जहाँ तक ये सवाल आता है कि गौ मांस खाया जाना, ये मुसलमान के धर्म में लिखा हुआ है, ये ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। और ये जो घटना हुई थी ये अब मेरे ख्याल से मुस्लिम जो है एक अफवाह उड़ा रही है कि ऐसा हिंदू कर रहे हैं कि मुस्लिम को गौ मांस खाने पे रोक लगाया जाना चाहिए। जी ये तो सरकार को तय करनी चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान में गौ माता की पूजा होती है और नाग देवता की पूजा होती है, इन दोनों की रक्षा करना सरकार का भी कर्तव्य और हमारे हिंदुस्तानी भाइयों का भी कर्तव्य होता है कि हम गौ माता की रक्षा करें।
ठीक है, ठीक है संजय जी। संजय जी जो अपनी बात रख रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई सरकार का काम है, सरकार ये तय कर दे कि हमें इनकी रक्षा करनी है, और वैसा राज्य की नीति निरीक्षक तत्व कहते हैं।
इस देश की सरकार ने एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर नामक एक पोस्ट मंत्रालय में रखी हुई है और गो संवर्धन के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसा मैंने शुरू में कहा कि गो रक्षा की बात तो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में है, शराबबंदी के साथ साथ। अब शराबबंदी की हकीकत सब जानते हैं और गो संवर्धन की हकीकत भी सामने आ रही है।
बिल्कुल। शैलेश जैन है, मैं थोड़ा सा अब विषय बदल रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि दादरी में जो कुछ भी हुआ हिंदुओं को बदनाम करने और गौ हत्या से प्रतिबंध हटवाने के लिए करवाया गया, इसमें वहाँ की सरकार, सेकुलर और कुछ मीडिया वाले भी शामिल हैं, इसलिए इस घटना को एक खास एंगल से इतनी कवरेज दे रहे हैं। इस घटना की इतनी कवरेज क्यों हो रही है?
नहीं देखिए, इनकी बात में एक तर्क तो है, जब इस तरह की कोई घटना होती है तो जो अंग्रेजी मीडिया इस देश का है, वो इलेक्ट्रॉनिक हो या अखबार हो, जो अपने को तरक्की पसंद आधुनिक कहता है, वो अंग्रेजी द अंग्रेज परस्त पश्चिमी अनुकरण वाला है, तो कहीं ना कहीं जो कुछ भारत में पारंपरिक था वो दकियानूसी का प्रमाण बताया जाता है। आज जब मीडिया गया है दादरी के इस गांव में तो वहां से खदेड़ा गया है, ये अभी स्टिकर पे आपके चल रहा था। तो मुझे लगता है कि जैन साहब की ये बात तो सही है कि जब भी कोई ऐसी घटना होती है उसका दोहन हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार करता है।
मैं अभी अपने बीबीसी हिंदी फेसबुक पर टिप्पणियां पढ़ रहा था, उसमें बहुत सारी टिप्पणियां तो बीबीसी हमारे लिए थी कि आप इस बहस को जबरदस्ती करवा रहे हैं और आप लोग ये करते हैं और वो करते हैं, आप मुस्लिम विरोधी हैं, इस तरह की तमाम बातें।
मुझे लगता है कि बहस आप जो कर रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है, वो उसके दो मुद्दे हैं और दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता और एकांत के बुनियादी अधिकार के साथ जुड़ा है, और दूसरा इस देश के कानून के राज के साथ। दोनों पर चर्चा होनी जरूरी है, बहाना कुछ भी हो, निमित्त कुछ भी हो।
एक श्रोता को शामिल कर रहे हैं जी, नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं।
मैं पठान खान गज्जू बोल रहा हूं, बाड़मेर चौटा से।
क्या नाम बताया आपने?
पठान खान गज्जू।
पठान खान गज्जू
जी, सर
जी,
मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम भारत में हिंदू राज में बैठे हैं, ठीक है, इस वजह से गौ काटना मुसलमानों को बंद कर लेना चाहिए, और दूसरा मीट है उन पर प्रतिबंध हिंदू न लगाएं।
किस पर प्रतिबंध न लगाएं?
बीजेपी की सरकार होने के कारण यही काम हो रहे हैं।
अच्छा जी, पहली बात तो है कि तथ्यात्मक गलती कर रहे हैं, कह रहे हैं हिंदू राज में हम बैठे
हैं। नहीं, मुझे लगता है कि उनको ये एहसास हो रहा है कि अब वो हिंदू राज में रह रहे हैं, कि संविधान कुछ भी कहता हो। मेरे ख्याल में पठान खान गज्जू साहब को ये बात नागवार गुजर रही है कि जो माहौल बन रहा है वो लगभग एक हिंदू राज का बन रहा है, और उन्होंने भाजपा के राज की बात भी उसमें जोड़ी, तो कहीं ना कहीं दलगत पक्षधरता भी उसमें झलक रही है।
विनय शुक्ला हैं, ये लिख रहे हैं फेसबुक पर कि इस तरह की घटनाओं में जिस तरह के भड़काऊ लोगों के बयान मीडिया दिखाती है, उससे लगता है कि देश में अफवाह फैलाने वाला सबसे बड़ा लाउडस्पीकर मीडिया के पास है। बहुत बड़ा सवाल मीडिया पर भी है बार बार कि जितना उसका एक बयान आता है, एक छोटा सा बयान, छोटे से बयान कर को बयान को टीवी जो है 20 बार दिखाता है, 50 बार दिखाता है, जिन्होंने नहीं भी देखा है वो भी देख के मीडिया का रोल क्या है? मीडिया किस तरह
कीजिएगा, मीडिया पर यह आरोप हर बार लगता है, जब क्रिकेट का भंडाफोड़ होता है तब भी लगता है। मुझे तो आपत्ति है कि ये जो सार्थक बहस है कानून के राज और व्यक्तिगत स्वतंत्रता वाली, धर्मनिरपेक्षता वाली, वो क्रिकेट बोर्ड के विवाद से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। वो मुझे लगता है कि वो इंद्रानी मुखर्जी नींद की गोलियां खाकर अस्पताल पहुंच गए उससे अधिक महत्वपूर्ण है। हम कितनी बार पीट पीट कर अमहत्वपूर्ण चीज़ों पर अपना समय व्यर्थ करते हैं, ये बहस तो मुझे फिर भी सार्थक लगती है। वो भोंपू बड़ा है मगर वो कभी कभी तो संयम बरतने की राय भी देता है ना, हम वो सुने जो हमको अपने लिए सार्थक लगता है। और आप बंद क्यों नहीं कर देते अगर मीडिया का शोर आपको इतना लगातार गुजरता है, आप अखबार न पढ़ें और टीवी बंद कर दें।
एक श्रोता को शामिल कर रहे हैं कार्यक्रम में जी, नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं।
जी सर, सुरेश कुमार जैनिया बोल रहा हूं।
सुरेश कुमार जी कहां से बोल रहे हैं?
मैं नोर तहसील जिला हनुमानगढ़ ग्राम पंचायत नड़ाऊ से बोल रहा हूं सर।
अच्छा, ये कौन सा राज्य पड़ता है?
राजस्थान।
अच्छा हाँ, राजस्थान से जी।
सर नमस्ते, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी ये सर बता रहे थे कि वैदिक परंपरा में गोमांस खाया जाता था, लेकिन वैदिक परंपरा में तो गो को अधन्य बताया गया, न हत्या करने वाली, ठीक है। और उसके बाद दूसरी बात आती है कि मतलब कहीं भी जाके चलो, जब राजस्थान गवर्नमेंट के कहने पर जब राजस्थान के मुसलमान ऊंट को मारने पर मतलब रोक लगा सकते हैं, तो यूपी गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं कर सकती कि वो गो हत्या के ऊपर प्रतिबंध लगाए? वो मुसलमान मानेंगे नहीं क्या? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान है, वो ईमान के सच्चे हैं, वो हर बात मानेंगे।
बहुत पते की बात कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान है ईमान के पक्के हैं।
देखिए इसमें दो पक्ष हैं, तो क्या जो हिंदू हिंदुस्तान के वो अपने धर्म के पक्के नहीं हैं? दिक्कत यह है कि जब मैं अपने को दीन और ईमान का पक्का मानता हूँ और बहुसंख्यक भी अपने को दीन और ईमान का पक्का मानता है, तो हम एक दूसरे की मिरर इमेज बन जाते हैं। मुझे लगता है कि इनकी जो दूसरी बात है वो विचारणीय है। प्रतिबंध तो अभी भी लगा हुआ है उत्तर प्रदेश में गो हत्या पर, मगर जब कोई घटना होती है तो क्या उसका आरोप मात्र अपराध को प्रमाणित कर देता है? अगर अपराध प्रमाणित होता है तो क्या भीड़ अपने हाथ में सजा देने का अधिकार ले सकती है? और मुझे लगता है कि जो दूसरी बात ये कह रहे हैं कि वेदों में क्या कहा है और नहीं कहा है, वेद कोई एक समय में लिखी पुस्तक नहीं है, वेद की ऋचाएं सैकड़ों साल के बीच में लिखी गई और श्रुति के अनुसार उनका हस्तांतरण हुआ है
वाचन परंपरा
में। तो एक चीज़ का दूसरी से विरोध भी हो सकता है कि एक समय जो मैंने कहा ना कि अगर पूर्व वैदिक काल में होता था तो उत्तर वैदिक काल तक शायद समाप्त हो गया होगा।
और ये भी देखने वाली चीज़ है कि उस समय की जो तत्कालीन परिस्थितियाँ थी, क्या चीज़ें आपके हिसाब से थी, उसी हिसाब से चीज़ें बनाई गई और उसी हिसाब से चीज़ें लिखी गई। एक श्रोता को शामिल कर रहा हूँ मैं कार्यक्रम में। जी नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
हेलो
जी।
हेलो
जी नाम बताएं।
दीनानाथ दुबे गोंडा से बोल रहा हूँ जी।
दीनानाथ जी गोंडा से बोल रहे हैं, बताइए।
अरे इसमें तो सारी जिम्मेदारी सरकार की होती है, जो बस शालाएं चालू रखते हैं उनमें क्या काटे जाएंगे, गौ नहीं काटे जाएंगे तो और काटे क्या जाएंगे, तो ये तो सरकार ही तय करेगी क्या खाना है क्या नहीं खाना है, आदमी कहाँ तय कर पा रहा है।
सरकार मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई जानवर कट रहे हैं तो सरकार तय कर रही है,
बाकायदा डॉक्टर नियुक्त है, बाकायदा लाइसेंस दिया जाता है, तो आखिर बंद नहीं होते तो मांस कहाँ जाएगा जो काटी जाती है गाय।
जी जी बहुत बहुत शुक्रिया।
सरकार हाँ खुद जिम्मेदार है सर।
नहीं सरकार की जिम्मेदारी क्या ज्यादा ये नहीं कि कानून व्यवस्था बनाए रखे
और इस तरह की बंद करा दे तो अपने आप गोकटी बंद हो जाएगी, बताला है तो सरकार लाइसेंस देती है किस वास्ते।
जो घटना दादरी में हुई है मोहन भाई वो वधशाला वाली
नहीं, वाले नहीं है।
उसके ऊपर आरोप उस बेचारे पर जो मारा गया है ये है कि उसने छुपकर अपने घर में गोवध किया है और गोमांस भक्षण किया है। अब तक ये आक्षेप आरोप प्रमाणित कहीं हुआ ही नहीं है और उसके बाद आप लगे हैं कि भीड़ ने मार डाला और फिर वो आकस्मिक दुर्घटना हो गई।
ये तो उसी तरह की बात है ना कि आज जिस समाज में बर्बर समाज की बात हो रही है कि आप गए और लोगों ने हथियार उठाए और उसके बाद इस तरह की वारदात हो गई। एक श्रोता को शामिल कर रहा हूँ। जी नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं?
हेलो मेरा नाम रंजीत खजूरिया है
जी।
मैं जिला राजौरी जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ
जी।
यहाँ तक खाने पीने की चॉइस का संबंध है, मैं तो समझता हूँ कि ये इंडिविजुअल चॉइस होती है, ये किसी को खुद तय करना है अपनी मान्यताओं अपनी परंपराओं अपने कल्चर अपने रिलीजन के हिसाब से या अपने रीजन के हिसाब से। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो है ये समय बहुत महत्वपूर्ण है कि समय पर ये मुद्दा उठाया जा रहा है और ये सिर्फ यूपी में ही नहीं अभी जम्मू कश्मीर में भी ये मुद्दा उछला है, अगर किसी और राज्य में भी ये राजस्थान में भी उछला है। समय महत्वपूर्ण है क्योंकि एक साल से ज्यादा का समय हो गया जो केंद्र में सरकार आई है और जो चुनावी वादे किए गए थे वो वादे लगभग अभी अपेक्षित हैं कि अभी पूरे होने की तरफ नहीं बढ़ पाए। जो कॉमन आदमी को एक फील गुड फैक्टर लग रहा था उसमें अब थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट का फैक्टर आता जा रहा है क्योंकि वो चीजें पूरी नहीं हो पा रही
है। तो एक मुद्दा सामने आ गया।
कौटिल्य ने बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये कौटिल्य की जो एक नीति है कि आप किसी न किसी मुद्दे में उलझाए रखें, ये उस तरह का एक गैर जरूरी मुद्दा जो है हर लिहाज से उछाला गया है जो कि बिल्कुल जरूरी नहीं।
जी जी रंजीत खजूरिया साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये परफेक्ट टाइमिंग की बात कर रहे हैं और ये बिल्कुल सही बात है। पिछली बार चुनाव थे तो
नगर कांड
हुआ और इसके बाद आप देखिए फिर से ये सब हो रहा है। तो ये जो टाइमिंग का मामला है,
टाइमिंग का मामला तो बहुत अच्छा है, मगर यदि मैं बिल्कुल डेविल्स एडवोकेट और कंट्रेरियन वाली बात कर रहा हूँ, ये भी कहा जा सकता है कि मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए एजेंट प्रोवोकेटर्स ये काम करा रहे हैं। सरकार अपनी असफलताओं से ध्यान बटाने को कर रही है या पस्त सुस्त कांग्रेस और अन्य धर्मपेक्ष दल ये करवा रहे हैं।
लेकिन इसको सिद्ध कौन करेगा कि भाई इसके पीछे कौन है?
इसी के लिए कानून का राज जरूरी है, निष्पक्ष जांच जरूरी है और जनतांत्रिक पारदर्शिता और मीडिया की भूमिका जरूरी है।
भाई ऐसा जो आप बात कह रहे हैं कि भाई बीजेपी कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी करवा रही है
और बीजेपी कहती है कि हमारे विरोधी करवा रहे हैं,
तो ये तो वाकई इस पे तो कोई
यही मीडिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता की जरूरत है
कि आगे आगे चीजें कहाँ जाएंगी। लेकिन ओवरऑल अगर हम एक समअप करना चाहें, एक आखिरी टिप्पणी आपके लेना चाहता हूँ कि ये मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा बना कैसे?
ये मुद्दा बड़ा बनना चाहिए क्योंकि सीधे सीधे व्यक्ति के बुनियादी अधिकारों से, उसकी निजता और एकांत के अधिकार से, मानवीय अधिकार से और देश में कानून के राज से जुड़ा हुआ है। निश्चित रूप से इस वक्त बहाना गोमांस भक्षण का है, ये पहनावे को लेकर हो सकता है, ये भ्रूण हत्या का हो सकता है, ये समलैंगिक प्रेम का हो सकता है। तो मुझे लगता है ये सारी बातें ऐसी हैं जिनके बारे में भारत को गंभीरता से सोचने की जरूरत है।
प्रोफेसर पुष्पेशवंत आपका बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम उन श्रोताओं का शुक्रिया जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और इससे पहले की कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। दादरी में अखलाक अहमद की हत्या के मामले में शनिवार को पुलिस ने दो मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक कुल 8 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। वेटिकन में कैथोलिक चर्च के पादरियों की एक बड़ी सभा से पहले समलैंगिक होने की बात कबूल करने वाले वरिष्ठ कैथोलिक पादरी को वेटिकन ने उनके पद से हटा दिया है। बांग्लादेश पुलिस का कहना है कि उत्तरी शहर कोनिया में जापान के एक नागरिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। एक हफ्ते में बांग्लादेश में किसी विदेशी नागरिक की हत्या का ये दूसरा मामला है। नाइजीरिया में सुरक्षा अधिकारियों ने कहा है कि अबूजा के बाहरी इलाकों में 3 आत्मघाती हमलों में 18 लोगों की मौत हो गई है। शुक्रवार रात हुए धमाकों में 40 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। रूस की वायुसेना ने सीरिया में आज भी बमबारी की है। रूस की सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के कई ठिकानों पर हमले किए गए हैं। बीबीसी समाचार।
तो इस सभा में बस इतना ही। अगले अंक यानी 9:30 बजे एक बार फिर से हाजिर होंगे। तब तक मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।